ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रपंच नाना प्रकार की रचना संयुक्त भासता है, परंतु भीतर से तुच्छ है। इसकी तृष्णा त्याग के तुम सुखी हो। जैसे स्वप्न में बड़े आडंबर भासते हैं, सो भ्रांति मात्र और असत्य है, वास्तव में कुछ नहीं, तैसे ही यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, चित्त से कल्पित है और देखने में बड़ा विस्तार रूप भासता है। विचार करके ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आता। जैसे स्वप्न सृष्टि जागृत में कुछ नहीं मिलती और कुसवारी को अपना रचा ग्रह बंधन करता है, तैसे ही अपना रचा जगत मन को दुख देता है। इसे इसको त्याग करो। जिस पुरुष ने इसको असत्य जाना है, वह जगत की भावना फिर नहीं करता है। जैसे मृग तृष्णा के जल को जिसने असत्य जाना है, वह पान के निमित्त नहीं धावता, और जैसे अपने मन की कल्पित स्त्री से बुद्धिमान राग नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों में राग नहीं करता। और जो अज्ञानी है, वह राग करके बंधेमान होता है। जैसे स्वप्न में असत्य स्त्री से चेष्टा करता है, तैसे ही अज्ञानी असत्य जगत को सत्य जान के चेष्टा करता है। बुद्धिमान असत्य मानकर नहीं करता। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही मन के मोह से जगत भासता है और भयदायक होता है, पर सब भावना मात्र है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल भासता है और उसके ग्रहण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान नहीं करता, तैसे ही जगत के पदार्थों की इच्छा अज्ञानी करता है, ज्ञानवान नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह मैंने परम गुणों का समूह तुमको उपदेश किया है, इसकी भावना करके तुम सुखी होंगे। जो मूर्ख इन वचनों को त्याग के दृश्य को सुखरूप जान के उसमें लगते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई शीत से दुखी हो और प्रत्यक्ष अग्नि को त्याग कर जल में प्रतिबिंबित अग्नि का आश्रय करे और उससे जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मूढ़ है। तैसे ही आत्मविचार को त्याग के जो जगत के पदार्थों की सुख के निमित्त इच्छा करते हैं, वे मूढ़ है। सब जगत असत्य रूप है और मन के मनन से रचा है। जैसे स्वप्न में चित्त से नगर भासता है, तो यदि वह नगर जलता भासे तो कदाचित नहीं जलता, तैसे ही जगत के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। वह उपजने बढ़ने घटने और नाश होने से रहित है। जैसे बालक अपनी क्रीड़ा के निमित्त हाथी घोड़ा नगर रचता है और समेट लेता है, तो वह उसके उपजने मिटने में ज्यों का त्यों है। और जैसे बाजीगर बाजी को फैलाता है और फिर लय करता है, तो उत्पत्ति लय में बाजीगर ज्यों का त्यों है। तैसे ही आत्मा जगत की उत्पत्ति लय में ज्यों का त्यों है, उसका कुछ कदाचित नष्ट नहीं होता। जो सब सत्य है तो किसी का नाश नहीं होता। इस कारण जगत में हर्ष शोक करना योग्य नहीं, और जो सब असत है तो भी नाश किसी का न हुआ और दुख भी किसी को न हुआ। सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता। स्वरूप से किसी का नाश नहीं और सब जगत ब्रह्म रूप है तो दुख सुख कहाँ है। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत जगत बना नहीं, सब जगत प्रत्यक्ष रूप भासता है तो भी असत रूप है। उस असत रूप संसार में ज्ञानवान को ग्रहण करने योग्य कोई पदार्थ नहीं और सब जगत में ब्रह्म तत्व है कुछ भिन्न नहीं, तो त्रिलोकी में किस पदार्थ के ग्रहण त्याग की इच्छा कीजिएगा। जगत सत्य रूप हो अथवा सत्य, ज्ञानवान को सुख दुख कोई नहीं और भ्रांति दृष्टि अज्ञानी को दुखदायक होती है। जो वस्तु आदि अंत में असत्य है उसे मध्य में भी असत्य जानिए और उसके पीछे जो शेष रहता है वह सत्य रूप है जिसे असत्य भी सिद्ध होता है। जिनकी बाल बुद्धि मोह से आवृत्त है वे जगत के पदार्थों की इच्छा करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बालक को जगत विस्तार रूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते हैं और सुख दुखों को भोगते हैं। तुम बालक मत हो, जगत अनित्य है, इसकी आस्था त्याग कर सत्यात्मा में स्थित हो। जो आप संयुक्त संपूर्ण जगत असत रूप जानो तो भी विषाद नहीं और जो आप संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस दृष्टि से हर्ष शोक नहीं, ये दोनों निश्चय सुखदायक है। आप संयुक्त सब असत्य रूप जानोगे तो दुख न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावे तो इंद्रजाल की बाजी मत जानिए, इससे भी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण में दृष्टि आए और फिर नष्ट हो गए उनका शोक करना व्यर्थ है। जैसे गंधर्व नगर जो रत्नमणि से भूषित किया हो अथवा दूषित हुआ हो उसमें हर्ष शोक का स्थान कहाँ है, तैसे ही अविद्या से रचे पुत्र स्त्री धन आदि के सुख दुख का क्रम कहाँ है। जो पुत्र धन आदि बढ़े तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, क्योंकि मृग तृष्णा का जल बढ़ा भी अर्थ सिद्ध नहीं करता। तैसे ही धन दारा आदि बढ़े तो हर्ष कहाँ है, शोकवान ही रहता है। वह कौन पुरुष है जो मोह माया के बड़े शांतिमान हो, वह दुखदायक ही है। जो मूढ़ है वे भोगों को देख के हर्षवान होते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं और बुद्धिमानों को उन भोगों से वैराग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ और भोगों को अंतवत नहीं जानते उनको भोग की तृष्णा बढ़ती है और जो बुद्धिमान है वे भोगों को आदि से अंतवत जानते हैं और दुख रूप जानकर उनकी इच्छा नहीं करते। इससे हे राघव, तुम ज्ञानवान की नई व्यवहार में विचरो। जो नष्ट हो सो हो और जो प्राप्त हो सो हो, उसमें हर्ष शोक न करना, उसको यथाशास्त्र हर्ष शोक से रहित भोगो और जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो। यह पंडितों का लक्षण है। हे रामचंद्र जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना, जैसे ज्ञानवान विचरते हैं तैसे ही विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना, यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है वे सब बंधन के कारण हैं और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है वह किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ है कि सर्व मैं हूं वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, शुद्ध तत्व जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है उसका हृदय से आश्रय करो और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्यों को करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप है तैसे ही सब कार्य करते भी निर्लेप हो। जिस पुरुष की पदार्थों में न इच्छा है न अनिच्छा है और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है उसको कर्म का स्पर्श नहीं होता, वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना अधिक व्यवहार इंद्रियों से होता है, इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा न करो परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित होकर आत्म तत्व में स्थित हो। इंद्रियों के अर्थ का सार जो अहंकार है, जब यह हृदय में न फुरेगा तब तुम योग्य पद को प्राप्त होंगे और राग द्वेष रहित संसार समुद्र को तर जाओगे। जब इंद्रियों के राग द्वेष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तो भी मुक्ति रूप है। हे रामचंद्र जी, इस देह से आपको व्यतिरेक जानकर जो उत्तम आत्मपद है उसमें स्थित हो जाओ, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। इस संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल है, उसमें जो आत्मवेत्ता बुद्धि रूपी नाव पर चढ़ते हैं वे तर जाते हैं और जो नहीं चढ़ते वे डूब जाते हैं। यह बोध मैंने तुमसे क्षुरधार किनाई तीक्ष्ण कहा है। यह अविद्या का काटने वाला है, इसको विचार कर आत्म तत्व में स्थित हो। जैसे तत्ववेत्ता आत्म तत्व को जानकर व्यवहार में विचरते हैं तैसे ही तुम भी विचरो। अज्ञान की नाई न विचरना। जैसे जीवन मुक्त पुरुष का आचार है उसको तुम अंगीकार करना। भोगों से दीन न होना और मूढ़ के आचारवत आचार न करना। जो परावर परमात्म वेत्ता पुरुष है वे न कुछ ग्रहण करते हैं न त्याग करते हैं और न किसी की वांछा करते हैं। वे जैसा व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसी में विचरते हैं और राग द्वेष किसी में नहीं करते। बड़ा ऐश्वर्य हो, बड़े गुण हो, लक्ष्मी आदि बड़ी विभूति हो तो भी ज्ञानवान अज्ञानीवत अभिमान नहीं करते। महाशून्य वन में वे खेदवान नहीं होते और देवता का सुंदर वन विद्यमान हो तो उसमें हर्षवान नहीं होते। उन्हें न किसी की इच्छा है न त्याग है। जैसी अवस्था आन प्राप्त हो राग द्वेष से रहित उसी में विचरते हैं। जैसे सूर्य संभाव में विचरता है तैसे ही वे अभिमान से रहित देह रूपी पृथ्वी में विचरते हैं। अब तुम भी विवेक को प्राप्त हो जाओ, बोध के बल में स्थित हो और किसी पदार्थ की ओर दृष्टि न करो। निर्वैर निर्मल दृष्टि सहित विचरो और समा समता सहित पृथ्वी में स्थित होकर संसार की इच्छा दूर से त्याग कर यथा व्यवहार में विचरो और परम शांत रूप रहो। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार निर्मल वाणी से वशिष्ठ जी ने कहा तब राम जी का निर्मल चित्त अमृत से शीतल और पूर्ण हुआ। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अमृत से शीतल और पूर्ण होता है तैसे ही राम जी शांत होकर पूर्ण हुए। फिर राम जी बोले हे भगवन, आप सर्व धर्म और वेद वेदांत के पारज्ञ हैं। आपके शुद्ध उदार विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूं और उन अमृत रूपी वचनों को पाकर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवन, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे तो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। हे भगवन, मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही है, कहीं अंडे से कही है और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा है? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले हे रामचंद्र जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत है। कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत किनाई उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे, उनमें से तुमको एक ब्रह्मा की उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं, कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं, कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजते हैं, कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं, कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है, किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है, कभी मांसमय होती है और कभी सुवर्णमय होती है। कई सृष्टियों में चतुर्दश लोक है, किसी सृष्टि में कई लोक है और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से पूरी है और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपज कर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणें में त्रस रेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती, यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फुरती है उसकी संख्या वह भी नहीं कर सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में इखो के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपज ना हुआ। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होता है। जैसे समुद्र में पूर्वापार तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं हुआ। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं, और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती है, तैसे ही बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि होकर बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होंगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं फिर मिट जाते हैं, और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्म स्वरूप की ओर देखोगे तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्म दृष्टि से नहीं देखा तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग किनाई अभेद है, अविद्या में भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार के चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं तो भी अभिन्न है, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासता है तो भी भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।